लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत थाईलैंड के मिशनरियों की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। कई दशकों से कार्तिक मिशनरी पुरोहित भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर उत्तरी थाईलैंड के सुदूर पहाड़ी गांवों में आशा और मदद पहुंचा रहे हैं, जहां लोग सबसे बुनियादी आवश्यकता अवसर से भी कटे हैं। एक सुदूर पहाड़ी गांव की कल्पना करें, जहां घर बाकी दुनिया से अलग थलग एक पहाड़ी पर बिखरे पड़े हैं। कोई पक्की सड़क नहीं, बिजली नहीं, बुनियादी जरूरतों को खरीदने के लिए एक छोटी सी दुकान भी नहीं, और सबसे बड़ी बात कि कोई अस्पताल भी नहीं। रात की ठंडी हवा में एक बच्चे का रोना सुनाई पड़ रहा है, जो भूख से बिलख रहा है। गांव वाले इसे सुनते हैं, वे उन सिसकियों के पीछे छिपी पीड़ा को भी समझते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। वे सूर्योदय तक इंतजार करते हैं, एक उम्मीद के साथ, बस उम्मीद कि सुबह तक कोई मदद मिल जाए। यह भौतिक गरीबी की कहानी नहीं, बल्कि उससे भी अधिक क्रूर अवसर के अभाव की कहानी है। उनके लिए न चिकित्सा देखभाल की पहुंच है, न बेहतर जीवन का कोई मौका ही। जब चीजें बिगड़ने लगे तो बचाने का कोई साधन भी नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन भूली बिसरी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, ताकि वहां आशा की किरण जगा सकें। करीब 50 वर्षों पहले बेथरम धमसंघ के लूसियन लाइकोस्टे नामक एक कार्तिक धर्मदर्श ने एक युवा थाई पुरोहित फादर निपोर्थियन विहान से कहा था कि वे उनके साथ और बेथरम के अन्य पुरोहितों के साथ उत्तरी थाईलैंड के पहाड़ों में जाएं। उन्हें माय सियांग जाना था, जो उस समय इतना दूर वाला गांव था कि शहर के बहुत कम लोग कभी इसका नाम भी सुना होगा। यात्रा अत्यंत कठिन थी। पहाड़ों और घाटों के बीच से गुजरने वाले कच्चे रास्ते गांवों की ओर ले जाते थे, जहां लोग सादा जीवन जीते, अपना भोजन खुद उपजाते और अपने परिवारों का पालन पोषण शांतिपूर्वक करते थे। पुरोहित पर्यटक और मिशनरी के रूप में अपने विश्वास को फैलाने के लिए नहीं आए थे, वे उपचारक, मित्र और उन लोगों के लिए जीवन रेखा के रूप में आए थे जिनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक रात माई पांग नामक एक गांव में सन्नाटा एक बच्चे के रोने से भंग हो गया। अगली सुबह फादर पियत्रो और कुछ दूसरे बेथरम पुरोहित फादर निपोर्ट के पास आए। उन्होंने पूछा, क्या आपने कल एक बच्चे को रोते सुना? हाँ, मैं सुना था, फादर निपोर्ट ने उत्तर दिया। क्या तुम जानते हो कि वह क्यों रो रहा था? फादर पियत्रो ने कुछ रुक कर कहा। उसका चेहरा दुख से भारी था, उसने उत्तर दिया। वह इसलिए रो रहा था क्योंकि उससे भूख लगी थी, उसने कल से कुछ नहीं खाया है। फादर निपोर्ट चुप हो गए। उन शब्दों का भार उसके सीने पर गहराई से धस गया था। ऐसी दुनिया में जहां कुछ लोग बिना सोचे समझे खाना फेंक देते हैं, वहीं एक बच्चा भूखा था। युद्ध की वजह से नहीं, आपदा की वजह से भी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि खाने के लिए भोजन नहीं था। यहाँ गरीबी सिर्फ पैसे की वजह से नहीं थी, यह विकल्प की कमी की वजह से थी। कोई दुकान नहीं थी, कोई खाद्य आपूर्ति नहीं, कोई बाहरी सहायता नहीं मिल सकती थी, बस एक परिवार उम्मीद कर रहा था कि उनका बच्चा भूख सहते हुए सो जाए। अगले दिन मिशनरी माइला नोई नामक एक दूसरे दूर दराज के गांव की ओर बढ़े। वहां एक हताश व्यक्ति उनके पास आया। वह पैदल ही कई मील की यात्रा करके आया था, जिसकी 12 वर्षीय भतीजी के पेट में भयंकर दर्द हो रहा था। फादर पियत्रो, जो कई साल गांव वालों के बीच रहकर गुजारे थे, तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, उसमें कीड़े हैं। समाधान सरल था। निकटतम अस्पताल की दूरी 40 किलोमीटर थी, लेकिन इस परिवार के लिए 40 किलोमीटर 1000 के बराबर थे, क्योंकि उनके पास वहां पहुंचने का कोई साधन नहीं था। फादर निपोट हिचकिचाए नहीं, वे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। बच्ची उनके पीछे चिपक गई और उसकी माँ उसके पीछे बैठी। वह खड़ी पगडंडियों से होकर एक लंबी ऊबड़ खाबड़ यात्रा थी। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे दवाई दी और कुछ ही घंटों में उसे दर्द से राहत मिल गई। उसे सर्जरी की जरूरत नहीं थी, ना ही उससे महंगे इलाज की। उससे बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। फादर निपोट और उनके साथी पुरोहितों के लिए यह कोई असाधारण काम नहीं था, यह उनका दिनचर्या था। अंतहीन मील की यात्रा, अंतहीन जरूरतें और अटूट विश्वास कि दयालुता का एक काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। नवंबर 1970 में बिशप लाइकोस्ट ने फादर निपोट को दोई माइथो से दोई चांग तक एक और यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया। रास्ता जोखिम भरा और थका देने वाला था। बिशप लाइकोस्टे 60 से ज्यादा उम्र के थे, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। कई बार गिरे, लेकिन उनके साथियों ने उनकी मदद की। वे आराम नहीं कर सकते थे। बहुत से लोगों को अभी भी उनकी जरूरत थी। आखिरकार वे खाने के लिए एक पहाड़ की चोटी पर रुके। बिशप ने चावल का आधा हिस्सा लिया और फादर निपोट को दिया। फिर उनसे एक सवाल पूछा, जिसका उत्तर युवा पुरोहित ने अपने जीवन से दिया। निपोट, क्या आपको लगता है कि कोई थाई व्यक्ति इतना मूर्ख होगा जो इस तरह का काम करे? निपोट ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनके छोटे भाई का हाल ही में निधन हुआ था और उनका परिवार चाहता था कि वह घर लौट जाए। त्याग, थकावट और संघर्षों से भरे इस जीवन से दूर चले जाना आसान था, लेकिन एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने जीवन से जवाब दूंगा। बिशप लाइकोस्टे, फादर पियत्रो और फादर निपोट की यात्रा कभी भी पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना मात्र नहीं थी, यह थी करुणा की यात्रा, देखभाल करने का साहस, देने की इच्छा। वे सिर्फ पुरोहित नहीं थे, बल्कि भूले भटके लोगों के पिता थे, बीमारों के डॉक्टर थे और उम्मीद एवं निराशा के बीच एक सेतु। उनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना कभी भी शिखर पर पहुंचना नहीं, बल्कि दूसरे छोर पर इंतजार कर रहे लोगों तक पहुंचना था। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी चीज जो हम कर सकते हैं, वह ऊंचा उठना नहीं, बल्कि घुटने टेकना तथा किसी और को ऊपर उठाना है। क्या हम दयालुता के इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? जुबली वर्ष हमें यही निमंत्रण दे रहा है। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरी थाईलैंड के भूले बिसरे गांव में कलीसिया की आशा के मिशन पर एक कहानी सुन रहे थे, और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा दिन बसाया प्रेम अपार।
श्रोताओ, कल हमने हमारे प्यारे पापा संत पापा फ्रांसिस की भावभीनी विदाई दी। उनके पार्थिव शरीर को संत मरिया मेजर महागिरजा घर में दफनाया गया। संत पापा की मृत्यु घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करती है। परंपराएं जो संत पापा के निधन और उनके अंतिम संस्कार से लेकर कॉन्क्लेव की शुरुआत और उनके उत्तराधिकारी के चुनाव तक के क्षणों को चिन्हित करती है, लेकिन इस सेदे वाकेंट या रिक्त सीट के दौरान वाटिकन में वास्तव में क्या होता है, आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। 1996 में प्रेरितिक संविधान यूनिवर्सी डोमिनिकी ग्रेसिस द्वारा शुरू किए गए मुख्य परिवर्तन 22 फरवरी 1996 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा पेत्रुस के सिंहासन की पवित्रता पर प्रख्यापित प्रेरितिक अधिकार के संबंध में तब तक लागू मानदंडों को संशोधित और अद्यतन किया, जिसे संत पापा पॉल सष्टम के प्रेरितिक संविधान रोमानो पोंटिफिकी एलिजेंदो 1975 द्वारा विनियमित किया गया था। दस्तावेज को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग प्रेरितिक परम धर्म पीठ या सेदे वाकेंट को नियंत्रित करता है, जिसका अर्थ है कलीसिया के संत पापा के कार्यकाल की समाप्ति और उनके उत्तराधिकारी के चुनाव के बीच की अवधि। दूसरा भाग रोमन परमाध्यक्ष के चुनाव की तैयारी और संचालन के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना। कार्डिनल मंडल संत पापा के चुनाव के लिए जिम्मेदार है, जो सटीक विहित मानदंडों में निहित सहस्राब्दी परंपरा का पालन करता है। यदि वास्तव में यह विश्वास का सिद्धांत है कि सर्वोच्च परमाध्यक्ष की शक्ति सीधे मसीह से प्राप्त होती है, जिसके वे पृथ्वी पर प्रतिनिधि हैं, तो यह भी संदेह से परे है कि कलीसिया में ऐसी सर्वोच्च शक्ति जिन्हें एक वैध चुनाव के माध्यम से दी जाती है, जिसे उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है, साथ ही धर्माध्यक्ष अभिषेक भी। 21 अप्रैल 2025 तक कार्डिनल मंडल में 135 निर्वाचक कार्डिनल शामिल हैं, जिनमें से 108 संत पापा फ्रांसिस द्वारा नियुक्त किए गए हैं और 117 गैर निर्वाचक सदस्य हैं। जो कार्डिनल सेदे वाकेंट शुरू होने के दिन पहले ही 80 वर्ष के हो चुके हैं, उन्हें निर्वाचन के बाहर रखा गया है। हालांकि 80 से अधिक उम्र के कार्डिनल अभी भी तैयारी बैठकों, चुनाव से पहले आम सभा में भाग ले सकते हैं। निर्वाचक मंडल में केवल कार्डिनल होते हैं। उनमें लगभग एक अद्भुत संश्लेषण में रोमन परमाध्यक्ष के व्यक्तित्व और पद की विशेषता वाले दो पहलू व्यक्त किए गए हैं। रोमन क्योंकि उन्हें रोम की कलीसिया के धर्माध्यक्ष के रूप में पहचाना जाता है और इसलिए इस शहर के पुरोहितों के साथ घनिष्ठ संबंध में है, जिसका प्रतिनिधित्व रोम के प्रेस्बिटेरियल और डियाकोनल शीर्षकों के कार्डिनलों और उपनगरीय क्षेत्रों के कार्डिनल धर्माध्यक्ष करते हैं। विश्वव्यापी कलीसिया के परमाध्यक्ष क्योंकि उन्हें अदृश्य चरवाहे का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया जाता है, जो पूरे झुंड को शाश्वत जीवन के चरागाहों की ओर ले जाता है। कलीसिया की सार्वभौमिकता इसके अलावा कार्डिनल मंडल की संरचना में अच्छी तरह से दर्शाई गई है, जो हर महाद्वीप के सदस्यों को इकट्ठा करती है। कॉन्क्लेव एक प्राचीन संस्था जो नए संत पापा का चुनाव करती है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इसकी आवश्यक संरचना की पुष्टि की और अनिवार्य किया कि सभी चुनाव कार्यवाही विशेष रूप से प्रेरितिक भवन के सिस्टीन चैपल में होगी। अतीत की तरह रोमन परमाध्यक्ष के चुनाव को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखने और इसे एक योग्य और पूर्व निर्धारित निर्वाचन निकाय को सौंपने की आवश्यकता की मान्यता दी गई है। इसके अलावा कॉन्क्लेव की प्रक्रियाओं का उद्देश्य न केवल स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, बल्कि प्रत्येक निर्वाचक कार्डिनल के निर्णय की स्वतंत्रता की गारंटी देना भी है, जिससे उन्हें अनुचित जिज्ञासा और अनुचित दबावों से बचाया जा सके। प्रेरितिक संविधान यूनिवर्सी डोमिनिकी ग्रेसिस द्वारा तीन मुख्य परिवर्तन पेश किए गए। पहला, चुनाव की पूरी अवधि के लिए कार्डिनल निर्वाचकों और चुनाव के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शामिल लोगों के निवास वाटिकन सिटी कासा सांता मार्ता में है। पहले कार्डिनलों को मतदान प्रक्रिया की पूरी अवधि के लिए सिस्टिन चैपल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। निर्वाचक कार्डिनल परमाध्यक्ष के चुनाव के लिए केवल गुप्त मतदान के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। यह पिछले नियमों द्वारा प्रेरणा अर्ध पूर्व प्रेरणा द्वारा चुनाव के लिए दिए गए विकल्पों को समाप्त करता है, जिन्हें इस तरह के व्यापक और विविध चुनावी निकाय के विचारों को प्रतिबिंबित करने के लिए अब उपयुक्त नहीं माना जाता था। समझौते द्वारा चुनाव को भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसे लागू करना मुश्किल था और इससे मतदाताओं के बीच एक निश्चित सीमा तक गैर जिम्मेदारी हो सकती थी, जिन्हें इस मामले में व्यक्तिगत वोट डालने की आवश्यकता नहीं होगी। चुनाव की इस पद्धति के अंतर्गत यदि कई चरणों में मतदान के बाद भी अपेक्षित बहुमत वाला उम्मीदवार सामने नहीं आता तो निर्वाचक कार्डिनल एक अलग बहुमत मानदंड अपनाते हुए सर्वसम्मति से समझौता कर सकते हैं। नए परमाध्यक्ष के वैध चुनाव के लिए आवश्यक मतों के बारे में यूनिवर्सी डोमिनिकी ग्रेसिस के अनुच्छेद 75 ने शुरू में स्थापित किया कि 33वें और 34वें मतदान के बाद यदि कोई आम सहमति नहीं बनती है तो केवल पूर्ण बहुमत के साथ मतदान आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस प्रावधान को संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने मोतू प्रोप्रियो रोमन पोप के चुनाव के मानदंडों के कुछ बदलाव के साथ के माध्यम से संशोधित किया, जिस पर 11 जून 2007 को हस्ताक्षर किए गए और उसी वर्ष 26 जून को अधिनियमित किया गया। इसने पारंपरिक नियम को बहाल कर दिया है कि नए परमाध्यक्ष के वैध चुनाव के लिए उपस्थित कार्डिनल निर्वाचकों के वोटों का 2/3 बहुमत हमेशा आवश्यक है। चुनाव हो जाने के बाद कार्डिनल डीकनों में से अंतिम कार्डिनल मंडल के सचिव और परम धर्मपीठ या धार्मिक समारोहों के मास्टर को सिस्टिन चैपल में बुलाता है। मंडल के डीन सभी निर्वाचकों की ओर से निम्नलिखित शब्दों के साथ निर्वाचित उम्मीदवार की सहमति मांगते हैं। क्या आप सर्वोच्च परमाध्यक्ष के रूप में अपने विहित चुनाव को स्वीकार करते हैं? सहमति मिलने पर वह फिर से पूछता है, आप किस नाम से पुकारा जाना चाहते हैं? दो औपचारिक अधिकारियों के साथ एक नोटरी के कार्य परम धर्मपीठ या धार्मिक समारोहों के मास्टर द्वारा किए जाते हैं, जो स्वीकृति के दस्तावेज का मसौदा तैयार करते हैं और चुने गए नामों को रिकॉर्ड करते हैं। इस क्षण में निर्वाचित उम्मीदवार सार्वभौमिक कलीसिया पर पूर्ण और सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करता है। इस बिंदु पर कॉन्क्लेव तुरंत समाप्त हो जाता है। इसके बाद निर्वाचक कार्डिनल नए निर्वाचित संत पापा को बधाई देते हैं और आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा लेते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कार्डिनल प्रोटोडीकन फिर प्रसिद्ध पंक्ति के साथ विश्वासियों के सामने नए संत पापा का चुनाव और नाम की घोषणा करते हैं। मैं आपको बहुत खुशी से घोषणा करता हूं, हमारे पास एक संत पापा है। इसके तुरंत बाद नए संत पापा संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रधान झरोखे से प्रेरित आशीर्वाद देते हैं। अंतिम चरण यह है कि परमाध्यक्ष के औपचारिक उद्घाटन समारोह के बाद उपयुक्त समय के भीतर नए परमाध्यक्ष निर्धारित संस्कार के अनुसार औपचारिक रूप से संत जोन लातेरन महागिरजाघर को अपने अधिकार में लेते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।